जिनमें कोई भी छूत का अछूत का स्नान का या कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए सब अवस्थाओं में भगवान का नाम। इसलिए आप ध्रुव के संबंध में वो कौन कहने वाला है? अच्छा, पहले आप उसके संबंध में बोलिए। कपिलदेव देवहूति का थोड़ा सा संवाद संक्षेप में बताइए, कैसे मृतते हैं, कैसे गर्भ में आते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर में वर्णन करो। जब प्राण छोड़ता है कोई जीव तो वायुमंडल से हो करके उसकी आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है, वायु के एक कण में समा जाती है और वायु के साथ साथ में आकाश में चली जाती है। वहां पर मेघ जो बादल होते हैं उसमें मिल जाता है, और फिर जब बरसता है तो या तो समुद्र में जाएगा और नहीं तो पानी इधर उधर में जाएगा, तो पेड़ में पौधों में वो भीतर प्रवेश कर जाता है, उस पानी के कण में, हवा के कण में, फिर उससे पानी के कण में, और फिर पेड़ पौधों में पहुंच जाता है, या पानी आदमी पी लेता है तो उसके शरीर में चला जाता है। फिर यदि पेड़ पौधों में फल लगे, वो फल हम खाया हमने या वो पानी पिया, स्त्री या पुरुष, तो उसके पेट में चला गया। फिर पेट से क्या बन, में खाने से उसमें से रक्त बनता है, वही पानी, अब किंतु उसी के अंदर में जीवाणु है, रक्त बना। जो गंदी चीजें हैं वो पैखाने के रूप में, और जो पानी के रूप में तरल है वो पेशाब के रूप में निकल गया, इसलिए फिर शुद्ध खून बना। खून से मेद मज्जा इत्यादि मांस और ये सब बनते हैं, उसी से मन भी बनता है, और उस तरह से रक्त में से विज इत्यादि बनते हैं, उसमें वो परमाणु के रूप में वो रहता है। स्त्री पुरुष के मिलन से, पशु पक्षियों में भी स्त्री पुरुष के मिलने से, वृक्षों में भी स्त्री पुरुष हैं, उनके मिलन से एक छोटे से परमाणु के रूप में उसके से संक्रमण करता है, भीतर में प्रवेश कर जाता है। अब वो धीरे 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 9 महीने में बढ़ते 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 कितना बड़ा हो जाता है। यदि हमारे स्त्री के गर्भ में हो गया तो वहां से बढ़ते 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 9 महीने में उसमें शक्ति संचार इत्यादि, कुछ चेतना इत्यादि आ जाती है। पशुओं में भी ऐसा ही है, वृक्षों में भी ऐसा, सब जगह ऐसा है। और फिर कुछ 9 महीने के बाद में वही जीव एक अंडे के रूप से बदल करके पुरुष, स्त्री या दूसरे रूप में इस पृथ्वी पर आता है। आने पर क्या होता है, पेट में कैसे रहता है, पेट में कैसे रहता है, झिल्ली होती है ना, झिल्ली ऐसा कस करके बंधा है, सिर नीचे और हाथ पैर ऊपर, और इस प्रकार से बंधा हुआ। अस्पतालों में चित्र बने हुए होते हैं, देख लेंगे, तसमस नहीं कर सकता, कितना दुख होता है। पैखाना और पेशाब के अंदर में कीड़े काटते होंगे, इतना दुख होता है, नरक से भी नरक। इसलिए जन्म और मृत्यु भी ऐसे है, इसमें इतना कष्ट होता है। चलो आगे, पुण्यात्मा भी होते हैं, वो पुण्य लोक में भी जाते हैं, किंतु वो कोई लाभ नहीं। एक लोहे की जंजीर है और एक सोने की जंजीर है। स्वर्ग क्या है, धनी कुल में जन्म लेना क्या है, ये सोने की जंजीर। अच्छा बतलाओ तो, सोने की जंजीर अच्छी है या लोहे की, कौन सा चाहिए, दोनों? अरे सोने वाला कीमती है, नहीं फ्री जंजीर है। इसलिए पुण्य भी वैसा ही है, स्वर्ग भी वैसा ही। तेतंग भुक्ता सर्वलोकम विशालम किने पुण्य मतलब, वो दोनों ही भगवान को भुला देते हैं। इसलिए दोनों अवस्था में रहते हुए भी या नहीं रहते हुए भी भगवान को स्मरण करो। क्या श्लोक बतलाया, पढ़ो। ठीक, बहुत। ये सब जो कथाएं हम लोग सुना रहे हैं, बहुत से पाठक आएंगे, इन कथाओं को नहीं सुनाएंगे। तेरी राबड़ी को गुड़ से रगड़ दी, ऐसा मधुर रूप से कीर्तन गाएंगे बेकाल का। इधर उधर की कहानियों को ले आएंगे भागवत की कथा में, असल कथा को छोड़ देंगे और इधर उधर की बात बतलाएंगे, जैसे कि आप लोग जो श्रोताएं खुश होकर के कुछ दे दें। वो महाभिखारी हमारी कथाओं में कुछ कड़वापन होगा किंतु अमृत के लिए होगा। हम आप लोगों से कुछ लेने नहीं आए, इसलिए हम सच सच जितनी भी बातें भागवत में लिखी गई है ठीक ठीक रूप में बतलाने की चेष्टा करेंगे। जिससे भी आप एक 10 मिनट के लिए भी आए हैं तो अंदर में सच्ची बात प्रवेश तो करे, सुनो से कुछ विचार तो कीजिए। इसलिए जो लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे संसार में अपने समस्त धर्मों का पालन करके भी वो सुखी नहीं रह सकते, ये भी अच्छी तरह से जानिए। यही गीता भागवत सबका ये सार है। इसलिए आप लोग ऐसी चेष्टा करेंगे कि संसार का जीवन का निर्वाह भी ठीक से हो, परिवार में झगड़ा लड़ाई भी न हो। किंतु जिस परिवार में दुर्योधन जैसे व्यक्ति हो और जिस परिवार में धुंधकारी जैसी स्त्री हो उसमें बड़ा भारी मुश्किल है। यदि कोई पति, भागवत में ये लिखा स्पष्ट रूप से, गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पतिर न सस्यात्, जन्मो चरिदेह समुपित, वो गुरु गुरु नहीं है जो भगवान के चरणों में हमको नहीं ले जाता, आसन्न जो मृत्यु है जैसी प्रमण आ रही है उसी हमारी रक्षा न कर दे, वो पति विवाह करने योग्य नहीं है जो अपनी पत्नी को भगवान की तरफ न ले जाए, वो गुरु गुरु नहीं है ऐसे गुरु शुक्राचार्य को बलि महाराज ने प्रत्याग कर दिया, वो मैया जन्म देने लायक माता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान की तरफ में न बढ़ाए, इसलिए भरत जी ने अपनी मैया का प्रत्याग कर दिया, वो भाई भाई नहीं है यदि अपने भाई को सत परामर्श दे करके भगवत भजन में नहीं लगाता। इसलिए हमारे विभीषण जी ने अपने भाई रावण का प्रत्याग कर दिया, दुष्ट व्यक्ति। और भी तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजव कंत ब्रज बनितन भय जग मंगलकारी। जिनके प्रिय राम वैदेही तजिय कोटि बरी सम जद्दप परम स्नेही। यह पत्र था तुलसीदास जी का लिखा हुआ मीरा जी के लिए। मीरा जी ने कहा, पत्र दिया, हमारे पति, हमारे सास ससुर, हमारे दूसरे लोग हमको भजन नहीं करने देते, तंग करते हैं, पीस खिलाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। सालग्राम आया, सालग्राम ले आए हैं देखो, किंतु उसमें सर्प लेकर के आते हैं, इस घर में हमारे लिए भजन करना कठिन है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, जिनके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि बैरी सम जद्दप परम स्नेही। माता पिता भाई गुरु तक भी हो, छोड़ो, जिस गुरु के द्वारा भगवान के चरणों में प्रेम नहीं आता ऐसे गुरु करने से क्या लाभ, उसको छोड़ो। इसीलिए बलि महाराज जी ने शुक्राचार्य का प्रत्याग, तजव पिता प्रहलाद, प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता का प्रत्याग किया, कहीं भी पिताजी का अनादर करने की बात नहीं कही गई, किंतु उन्होंने पिताजी की बात नहीं मानी। भय जग मंगल का, वो सब उनके लिए मंगल का। तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई का प्रत्याग कर दिया रावण का, और भरत जी ने अपनी मैया का कैसा प्रतिज्ञा किया, जब लौट करके आए अयोध्या को सुनी देखा, मैया दौड़ करके आई मिलने के लिए, बेटा तुम्हारे लिए हमने राज्य मांग करके सब ठीक किया है, पिताजी कहाँ गए, मर गए, अरे राम भाई हमारे भाई कहाँ है, वो तो वनवास गए, किस लिए, तुम्हारे राज्य के लिए मैंने सब किया, अब चलो राजगद्दी पर बैठो। अरे तू तो डाइन है, तेरे साथ में हमारा माता पुत्र का व्यवहार, आज से संबंध जीवन भर के लिए समाप्त, अब तुम मुझे बेटा मत कहना, मैं तुम्हें मैया नहीं कहूंगा, और नहीं कहा जन्म भर। जब रामचंद्र जी लौट करके आए, कुछ दिन सिंहासन पर बैठे, तो कह कही रोती हुई राम के पास में गई, बेटा तुम तो हमें मैया कहता है, किंतु भरत एक बार भी मुझे माँ कह दे, मैं निहाल हो जाऊं, मैं सुख से मर सकूं, एक बार भी मैया नहीं कहता है, वो कहता है क्या, महारानी कैकई कहता है, बेट मैया नहीं कहता। तुम एक बार उसे कह दो तो तुम्हारी आज्ञा का वो टाल नहीं सकता, उल्लंघन नहीं करेगा, तुम एक बार कह दो। राम कुछ चिंतित हुए और उन्होंने कैकई जी को विदा किया और भरत जी को बुलाया, भैया देखो मैंने तुमसे जीवन में कुछ नहीं कहा, मैं तुमसे एक बात मैं मांगता हूं, तुम नहीं मत करना, बस एक ही मैं मांगता हूं। भरत जी ने सोचा ये आज तक तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, मैं तो संपूर्ण से इनके प्रति समर्पित हूं और उनकी सेवा करता हूं, तो ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो ये मांग सकते हैं। चिंता करके बोले जी भैया तुम्हारी सब बातों को मान लूंगा, केवल एक महारानी कैकई को माता कहने के अतिरिक्त तुम जो कहेगा माने। तो तजव पिता प्रहलाद भरत महतारी, तजव कंत पतियों को भी प्रत्याग किया। शास्त्र में कृष्ण ने स्वयं कहा है जो पति दुर्भागा हो, कोढ़ी भी हो, लंगड़ा लूढ़ा काला कलूठा सब भी हो, तो पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने, सारी गोपियां कितनी लाखों करोड़ों, पतियों से कोई संपर्क नहीं, क्यों, वो पतियां उनके भगवत भजन में बाधा देते थे। इसलिए शास्त्र में डंका की घोषणा की गई है, यदि पति भगवान का भजन नहीं करता है, स्त्री को कंट्रोल करना चाहता है, तो उस पति के लिए जो कि नास्तिक है, मूर्ख है, उसके लिए अपना जीवन भी बर्बाद करे ऐसा नहीं, भगवान का भजन करे। और स्त्री भी जितनी भी प्यारी हो, बेटा भी प्यारी हो, प्यारा हो, यदि वो भगवान का भजन नहीं करता है तो उसका भी एकदम प्रत्याग करो। ये भागवत की कथा है, ये निराली है, सब पुराणों में कुछ छिपा करके कहा गया लोगों के अधिकार के अनुसार, किंतु भागवत निर्मल सत्य की डंके की चोट पर घोषणा करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने पतियों का प्रत्याग करो और पति लोग अपने स्त्रियों को छोड़ करके भजन, ऐसा नहीं। एक समस्या माने समाधान करके इस बीच का रास्ता अपनाओ। स्त्रियों के लिए जो कहा गया है कि पतियों की सेवा करो, ये पक्षपात नहीं है, शास्त्रों का या भगवान का पक्षपात नहीं है, उसकी रक्षा के लिए, स्त्री के लिए, जो उसका प्रेम का धर्म जो है नष्ट न हो जाए, ये बड़ी भारी चीज है, इसको वो भगवान की सेवा में लगा सके। पुरुषों में वो प्रेम नहीं है, उनमें तो अभिमान है, मैं करता हूं, स्त्री का मैं पति हूं। अरे पति कब से हुआ, विवाह के बाद से कि पहले से ही पति बन गया, ये भी सोचो। इसलिए स्त्रियों के लिए जैसे आदेश है, जैसे लंगड़ा बूढ़ा पति हो तभी उसकी सेवा करो, ये ठीक है, और पति के लिए भी कहा गया कि तुम उसका पालन पोषण और सब दायित्व तुम्हारे ऊपर मैं देखो, सहिष्णु बनो, यदि थोड़ी सी बात के लिए कभी कभी वो थोड़ा सा बिगड़ जाती है तो सहिष्णु होकर के उसको संभालो। जैसे पुत्र को कंधे पर बैठाया और वो नूच रहा है तो क्या करेगा, और यहीं पर टट्टी कर दी तो एक थप्पड़ देगा ना बेटे को, ना क्या करेगा। तो इतनी सी भी सहनशीलता तुम्हारे अंदर में नहीं है, और स्त्री में सहनशीलता नहीं है, पति में नहीं है, तो रोज लड़ाई होगी, उसकी समस्या कोई भी ब्रह्मा भी आकर के, भगवान कृष्ण भी आकर के कुछ नहीं कर सकते, वो हार जाएंगे, हाथ जोड़ कर भाई मैं नहीं कुछ कर सकता। इसलिए बीच का रास्ता अपनाओ, भगवान का भजन कीजिए, सुख शांति से रहिए, कुछ स्त्री भी सहनशीलता हो, पति भी सहनशील हो। स्त्रियों का विशेष कर्तव्य है, वो कमा करके लाएं, और पति स्त्री क्या करेगी, उनके कष्ट को समझिए, कितना कष्ट करके दिन रात और तब ये पैसे ले आए हैं, और अच्छी तरह से उनकी सेवा करें, और इस पति भी उसी रूप में समझे, अपना दायित्व समझे। यदि अपना अपना दायित्व संभालेंगे चलेंगे तो कोई समस्या नहीं है, और नहीं तो थोड़ा सा में ही झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, कोई संभाल नहीं सकता, इसकी कोई रेमेडी नहीं होगी। इसलिए स्त्रियों पर अधिक दायित्व है, ये जगत जननी है, माता है, इसलिए सबका पालन करना उसका कर्तव्य है। वो परिश्रम करेंगे और ये क्या करेंगे, जब आएंगे शाम को अपने मधुर वचनों से उनको शांत कर देंगे, ठंडा पानी रसोई बना करके अच्छी तरह से की थी। किंतु आजकल स्त्रियां भी यदि वही काम करती हैं, पति पाते हैं 10,000 डॉलर तो वो पाती हैं यदि 40,000 डॉलर तो वो अब क्या कैसे करेंगे, फिर कैसे होगा, बात कैसे बनेगी, फिर तलाक के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रह जाता। तो भी सहिष्णु होकर के दोनों चलिए, अपना धर्म निभाइए, पति अपना धर्म, स्त्री अपना धर्म, और प्रेम से रह करके भगवान का भजन कीजिए। ये भी गीता का और भागवत का सार। गौर प्रमानंद।